الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عیب چھپاؤ جنت پاؤ یہ مضمون غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ 281 تا 300 سے لیا گیا ہے دعائے عطار یا رب المصطفیٰ جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ عیب چھپاؤ جنت پاؤ پڑھ یا سن لے اسے لوگوں کے عیب چھپانے والا بنا دنیا و آخرت میں اس کی عیب پوشی فرما اور اسے بے حساب بخش دے آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف کی فضیلت حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح و شام مجھ پر 10-10 بار درود شریف پڑھے گا بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد جو اپنے عیبوں کو جان لیتا ہے حضرت بی بی رابعہ ادویہ رحمت اللہ علیہا فرماتی تھیں بندہ جب اللہ رب العزت کی محبت کا مزہ چکھ لیتا ہے اللہ پاک اسے خود اس کے اپنے عیبوں پر مطلع فرما دیتا ہے پس اس وجہ سے وہ دوسروں کے عیبوں میں مشغول نہیں ہوتا بلکہ اپنے عیبوں کی اصلاح کی طرف متوجہ رہتا ہے چھپی ہوئی باتوں کی ٹٹول مت کرو غمزدوں کے غم دور کرنے والے خوش اخلاق آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اے وہ لوگو جو زبان سے ایمان لائے اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کی چھپی ہوئی باتوں کی ٹٹول نہ کرو اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی چھپی ہوئی چیز کی ٹٹول کرے گا اللہ پاک اس کے عیب ظاہر فرما دے گا اور جس کے اللہ پاک عیب ظاہر کرے گا اسے رسوا کر دے گا اگرچہ وہ اپنے مکان کے اندر ہو اے عاشقان رسول کسی مسلمان کے عیبوں کی ٹوہ میں نہیں پڑنا چاہیے رب کائنات پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا ترجمہ کنز الایمان اور عیب نہ ڈھونڈو صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو اور ان کے چھپے ہوئے حال کی جستجو میں نہ رہو جسے اللہ پاک نے اپنی ستاری سے چھپایا اللہ پاک عیب پوشی فرمائے گا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اپنے رب سے ہم گناہگاروں کو بخشوانے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے اور جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے اللہ پاک اس کی حاجت پوری کرتا ہے اور جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے اللہ پاک قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف دور فرمائے گا اور جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے تو خدا ستار قیامت کے روز اس کی عیب پوشی فرمائے عیب چھپاؤ جنت پاؤ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو جہان مدینہ کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جو شخص اپنے بھائی کا عیب دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کر دے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا جہنم میں چیخ رہے ہوں گے اے عاشقان رسول سبحان اللہ عیب پوشی کی فضیلت و اہمیت کے بھی کیا کہنے جو چیز آخرت کے لیے جس قدر اہم ہوگی شیطان اسی قدر اس کے پیچھے لگے گا لہذا مسلمان کو مسلمان کی عیب پوشی سے روکنے کے لیے پورا زور لگا دیتا ہے اور نوبت یہاں تک آ پہنچتی ہے कि आज मुसलमानों की अक्सरियत मुसलमानों की ऐब दरियों और गीबतों में मशगूल है और अक्सर कोई किसी की खामी ढकने के लिए तैयार ही नहीं, बिला तकल्लुफ बल्कि बसा औकात तो फखरिया दूसरों के आगे बयान कर देता है। उनमें से अगर किसी ने किसी का ऐब कभी छुपा भी लिया तो बस आर्जी तौर पर, जूं ही कुछ नाराज़ी हुई कि जितने भी ऐब छुपा कर रखे थे सब पर से एकदम पर्दा उठा देता है। आह, खौफ आखरत ही जाता रहा, यकीनन जहन्नम की सज़ा सही नहीं जा सकेगी। हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहि सलाम फरमाते हैं, कितने ही सेहतमंद बदन, खूबसूरत चेहरे और मीठा बोलने वाली ज़बानें कल जहन्नम के तबकात में चीख रहे होंगे। औरों के ऐब छोड़ नज़र खूबियों पर रख, ऐबों की अपने भाई मगर खूब रख परख। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, तूबू इलल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। गीबत ईमान में फसाद पैदा करती है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाही अलैह इरशाद फरमाते हैं कि गीबत बंदे मोमिन के ईमान में उससे भी जल्दी फसाद पैदा करती है जितनी जल्दी आकिला की बीमारी उसके जिस्म को ख़राब करती है। आकिला पहलू में होने वाले उस फोड़े को कहते हैं जिससे गोश्त पोश्त खाल सड़ जाते हैं और गोश्त झड़ने लगता है। मज़ीद फरमाया करते, ए इब्ने आदम, तुम उस वक्त तक ईमान की हकीकत को नहीं पा सकते जब तक लोगों के अयूब तलाश करना तर्क ना कर दो। जो अयूब तुम्हारे अपने अंदर पाए जाते हैं तुम उनकी इस्लाह शुरू कर दो और उन ऐबों को अपनी ज़ात से दूर कर लो। बस जब तुम ऐसा करोगे तो ये चीज़ तुम्हें अपनी ही ज़ात में मशगूल कर देगी और अल्लाह पाक के नज़दीक इस तरह का बंदा सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। एक नौ मुस्लिम की दर्दनाक आप बीती। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी अहले हक की सुन्नत भरी तहरीक है। इसके अकायद ऐन कुरान और सुन्नत के मुताबिक हैं। इससे हरदम वाबस्ता रहिए, इंशाअल्लाह आशिकान रसूल की सोहबत की बरकत से ईमान की हिफाजत का जज्बा, नेकियों की तरफ रगबत और गीबतों वगैरह गुनाहों से नफरत की सआदत हासिल होगी। हर हालत में ईमान की हिफाजत ज़रूरी है। अगर ईमान पर खात्मा ना हुआ तो इबादत कुछ भी काम ना आएगी। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, इन्नमल आमाल बिल खवातीम, यानी आमाल का दारो मदार खात्मे पर है। चाहे कैसी ही आफत आन पड़े ईमान हरगिज मुतजलजिल नहीं होना चाहिए। इस ज़मन में एक नौ मुस्लिम की दर्दनाक आप बीती सुनने से ताल्लुक रखती है। चुनाचे दिल्ली हिंद के इलाके सलीमपुर के मुकीम 22 साला नौजवान के कबूल इस्लाम का ईमान अफरोज वाकया कुछ यूं है। वह गैर मुस्लिम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उनके बाप की ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर बने। इस सिलसिले में उन्होंने 1994 में अपने डॉक्टर दोस्त के अस्पताल भेज दिया। वो गैर मुस्लिम डॉक्टर मुसलमानों से इस कदर नफरत करता था कि उनके हाथों की छुई हुई चीज़ तक खाना या पीना गवारा ना करता। उनकी भी यही आदत बन गई कि सारा दिन प्यासा रहना मंजूर मगर मुसलमानों के हाथ से पानी पीना नामंजूर। कई साल यूं ही गुजर गए। एक रोज़ सब्ज इमामे में मलबूस एक इस्लामी भाई आँखों के ऑपरेशन के लिए वहाँ आए। उनकी ज़बान और निगाह की हिफाजत का अंदाज और उसने अखलाक देखकर रफ्ता रफ्ता मैं उनके करीब हो गया। वो मुझ पर वक्तन फवक्तन इनफरादी कोशिश करते रहते। कुछ दिनों बाद वो इस्लामी भाई अस्पताल से चले गए मगर इनका उनसे राबता रहा और वो उनके पास आते जाते रहे। उन इस्लामी भाई के पास एक ज़खीम किताब थी जिसका नाम फैज़ान सुन्नत था। जब वो चौक वगैरह पर उसका दर्स देते तो इनफरादी कोशिश करते हुए इन्हें भी अब दर्स में शिरकत की दावत पेश करते। वो सुनने बैठ जाते। फैज़ान सुन्नत के दर्स की बरकत से कुछ ही दिनों में उनका दिल मज़हब इस्लाम के लिए नफ़रत के बजाय महब्बत महसूस करने लगा। अब वो मुसलमानों के साथ खा पी भी लेते और मसाजिद व अज़ान का एहतराम करते। 2004 सने ईस्वी में एक रोज़ आशिकान रसूल की मदनी तहरीक दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना का रिसाला गुस्ल का तरीक़ा उन्होंने पढ़ा, मगर सही तरीके से समझ ना सके। उन इस्लामी भाई से पूछा तो उन्होंने इनको रिसाले की मदद से तफसीलन तहारत के मसाइल समझाए और फरमाया कि हकीकी पाकी बग़ैर मुसलमान हुए हासिल नहीं की जा सकती। वो वक्त उनकी सआदतों की मेराज का था। उनके अल्फाज ने उनकी ज़िंदगी का रुख तब्दील कर दिया। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर कलमे तैयबा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। कुफ्र के अंधेरे छट गए और उनका दिल नूर इस्लाम से जगमगाने लगा। आशिकान रसूल की मदनी तहरीक दावत इस्लामी के सुन्नत भरे इज्तिमा में पाबंदी से शिरकत करने लगे और सिलसिला आलिया कादरिया रजविया में दाखिल होकर हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि अलैह के मुरीद हो गए और बा जमात नमाजें पढ़ने लगे। कभी कभी शैतान उन्हें मजहब इस्लाम के बारे में वसवसे डालता था। एक रोज़ मकतबतुल मदीना का रिसाला बुढ़ा पुजारी पढ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके वसवसों की जड़ कट गई। अल्हम्दुलिल्लाह 18 जुलाई 2005 को आशिकान रसूल के हमरा मदनी काफ़िले में सुन्नत भरे सफ़र की सआदत मिली। इससे पहले वो ज़रा ज़रा सी बात पर घर वालों से नाराज़ हो जाते। खाना मिजाज के ख़िलाफ़ मिलता तो खूब शोर मचाते थे। मदनी काफ़िले में सफ़र की बरकत से ये आदत भी निकल गई। घर वाले उनकी इस तब्दीली पर हैरान थे और मजहब इस्लाम से मुतासिर हो रहे थे। वो दाढ़ी शरीफ की सुन्नत अपनाने के साथ साथ सर पर सब्ज इमामा भी बांधने लगे, मगर घर जाते वक्त उतार लेते। चंद दिनों बाद बाज़ लोगों ने उनके खिलाफ घर वालों का मनफी जहन बनाया, जिस पर घर में सख्ती शुरू हो गई। अब उन्हें बात बात पर टोका जाता, बल्कि मारने से भी दरेग ना किया जाता। उन्होंने तंग आकर घर छोड़ दिया, मगर कुछ ही रोज़ बाद भाई वगैरह ने बहाने से बुलवाया और ज़बरदस्ती नाई यानी हज्जाम के पास पकड़कर ले गए। जब उन्होंने उस नाई को बताया कि मैं मुसलमान हो चुका हूं, तो वो डर गया और उसने दाढ़ी मूंढने से इनकार कर दिया। उनके घर वाले भी दाढ़ी काटने से डर रहे थे, मगर अफसोस के इल्मे दीन से बेबहरा एक मुसलमान ने घर वालों से कहा, दाढ़ी रखना ज़रूरी नहीं है, हमें देखो लाखों मुसलमान कहाँ दाढ़ी रखते हैं। ये सुनकर कुफ्र की तारीकियों में घिरे हुए घर वालों का दिल एकदम खुल गया और उन्होंने सोते में ब्लेड से उनकी दाढ़ी मूंढना शुरू कर दी। उनकी आँख खुल गई। दाढ़ी बचाने की जिद्दोजहद में उनका चेहरा लहूलुहान हो गया। वो रो रो कर उन्हें इस काम से बाज रहने की इल्तिजाएं करते रहे, मगर उन्होंने इनकी एक ना सुनी और दाढ़ी मूंड कर ही दम लिया। चेहरे से बहने वाला लहू उनके आंसुओं में शामिल हो गया। उन्होंने इसी पर बस नहीं किया, बल्कि उन्हें एक कमरे में कैद कर दिया। तन के कपड़ों के अलावा उनके पास और कुछ ना था। उनकी निगरानी की जाती, मगर वो किसी न किसी तरह छुपकर नमाजें अदा कर लेते। नींद की कुर्बानी देकर भी अपना वुजू कायम रखते ताकि मौका मिलने पर नमाज अदा कर सके। उनका कोई पुरसाने हाल था ना कि कोई हमदर्द था कि जो हमदर्दी के दो मीठे बोल सुनाकर उनकी ढारस बंधाता। तकरीबन 2 माह इसी तरह गुजर गए, यहाँ तक कि रमदान मुबारक का मुकद्दस महीना तशरीफ ले आया। आह, उन्हें कौन सहरी फराम करता। रमजान मुबारक का रोज़ा छोड़ना उन्हें गवारा ना था, चुनाचे उन्होंने बग़ैर सहरी ही रोज़ा रख लिया। शाम तक जब उन्होंने खाना नहीं खाया तो घर वालों को तश्वीश हुई। वो जमा होकर आए और खाना खाने के लिए जोर देने लगे। उन्होंने रख दिया। उन्होंने कहा, रख दो, मैं खा लूँगा। उनके जाने के बाद उन्होंने मजीद इसरार से बचने के लिए सालन इधर उधर कर दिया और रोटियां जेब में डाल ली, मगर घर वालों को किसी तरह शक हो गया और उन्होंने दिन के वक्त ज़बरदस्ती उन्हें खाना खिलाया। वो दिल ही दिल में कुढ़ते रहे मगर मजबूर थे, यूं वो 5 रोज़े ना रख सके। आखिरकार किसी सबब से घर वालों की तरफ से कुछ ढील मिली और वो दोबारा अस्पताल जाने लगे। वो बगैर सहरी रोज़े की नीयत कर लेते और बज़ाहिर दोपहर का खाना साथ ले जाते मगर शाम के वक्त उससे इफ्तारी करते। इसी दौरान उन्होंने इस्लाम कबूल करने के मुताल्लिक कानूनी कागजात भी मुकम्मल करवा लिए मगर घर वालों को पता नहीं चलने दिया। वो घर वालों से छुपकर जिस मस्जिद में नमाज अदा करने जाते थे वहाँ की इंतज़ामिया ने खौफ ज़दा होकर उन्हें मना कर दिया कि आप यहाँ ना आया करें, कहीं फसाद ना हो जाए। उनका दिल तो बहुत दुखा कि मैं मुसलमान होते हुए भी हालात की सितम ज़रीफ़ी की वजह से मस्जिद में दाखिले से रोक दिया गया हूँ, मगर बेबसी थी। बेचारे क्या कर सकते थे, दावत इस्लामी का मदनी मरकज़ वहाँ से बहुत दूर था और हालात के पेश नज़र उन्होंने खुद ही इस्लामी भाइयों को राबता करने से मना कर रखा था। परेशानियों के तसलसल ने उनके आसाब शल कर दिए थे और उन्हें कोई ऐसा हमदर्द व गमगुसार भी नहीं मिलता था कि जिसके कंधे पर सर रख कर चंद अश्क बहाकर अपने दिल का बोझ हल्का कर सके। आह, वो बिल्कुल तन्हा थे। ऐसे वक्त में उन्हें नमाज पढ़ने में बड़ा सुकून और हौसला मिलता था। उनकी ज़बान पर दुरूद शरीफ जारी रहता। अब उन्होंने हिम्मत करके 3 किलोमीटर दूर जनता कॉलोनी की मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करने के लिए जाना शुरू कर दिया। घर वाले एक बार फिर नरम पड़ चुके थे। एक रोज़ मोहल्ले के किसी नाम निहाद मुसलमान ने घर वालों को अच्छा लगाने के लिए उनका कुछ इस तरह जहन ख़राब करने की कोशिश की कि हम भी आखिर मुसलमान हैं, कौन सा रोज़ रोज़ नमाज पढ़ते हैं, बस जुमा या ईद की नमाज़ पढ़ लिया करते हैं। लगता है तुम्हारा बेटा किसी जिन को काबू करने का अमल कर रहा है, ये पागल हो जाएगा तो तुम्हें पता चलेगा। उसकी बातें सुनकर घर वाले घबरा गए और फिर से सख्ती शुरू कर दी। हत्ता कि दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ने के लिए उनके होंठ हिलाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। घर वाले उन्हें पकड़कर एक आमिल के पास ले गए। उसने भी कह दिया कि इस पर असरात हैं। इन हालात से वो बहुत दिल बर्दाश्ता हुए और शायद वो दोबारा कुफ्र की अंधेरों में खो जाते, मगर अल्लाह पाक का करम शामिल हाल रहा कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दावत इस्लामी के दीनी माहौल में आशिकान रसूल की ज़बानी महबूब रब जुल जलाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत बिलाल रदी अल्लाह अन पर होने वाले मजालिम की दास्तानें सुन रखी थीं। उन मजालिम के सामने इनकी तकालीफ कुछ भी नहीं थी। अपने मक्की मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कड़ी आजमाइशों और उन आजमाइशों पर किए जाने वाले बेमिसाल सब्र को याद करके उनका ईमान और मजबूत हो जाता। एक रोज़ वो छुपकर दावत इस्लामी के सुन्नत भरे इज्तिमा में जा पहुँचे। इत्तला पाकर घर वाले आधम के और उन्हें वहाँ से उठा कर ले गए। ना उन्होंने कोई मुजाहमत की और ना किसी को करने दी कि फसाद होगा। घर ले जाकर उन्हें इतना मारा कि वो नीम बेहोश हो गए। होश आने पर उन्होंने घर छोड़ने का अज़्मे मुसम्मम कर लिया। हालांकि 3 दिन पहले ही उनकी सरकारी नौकरी की तकरीरी का ऑर्डर मौसूल हुआ था, जिसके लिए उन्होंने सालों मेहनत और कोशिशें की थीं। अब एक तरफ ज़ाती मकान, माँ बाप और रोशन मुस्तकबिल और दूसरी तरफ ईमान जैसी अजीम दौलत, मगर उन्होंने रब करीम के करम से ईमान की हिफाजत की खातिर 21 मार्च 2007 को अपनी मर्जी से हिजरत की और अपना घर छोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो हिंद के मुख्तलिफ शहरों में आशिकान रसूल के हमरा मदनी काफिलों में सुन्नत व भरा सफ़र कर रहे हैं और घर वालों की सख्ती के बाइस रह जाने वाली तमाम नमाजें भी कज़ा कर चुके हैं। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं भी कभी नमाज में इमामत की सआदत हासिल कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी काफ़िले में सफ़र की बरकत से चंद सूरतों को दुरुस्त मखारिज के साथ याद करने اور نماز کے ضروری مسائل سیکھنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ لہذا 13 اپریل 2007 کو ان کی مراد بر آئی اور انہیں ہند کے جھانسی نامی شہر میں فجر کی جماعت میں امامت کی سعادت حاصل ہو گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ دعوت اسلامی پر میری جان قربان کہ اس نے کفر کی آگوش میں پلنے والے کو نہ صرف دولت ایمان سے نوازا بلکہ امامت کے مسلح پر لا کھڑا کیا۔ یہ سب میرے رب العزت کی رحمت اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت ہے۔ وہ نو مسلم اسلامی بھائی دوران سفر قنوج شہر کے مسلمانوں کے محلے کاغذیانی پہنچے۔ وہاں کی پرانی مسجد کے سامنے والا میدان لوگوں سے بھرا ہوا تھا، کوئی تاش کھیلنے میں تو کوئی جوئے میں مصروف تھا۔ نماز عصر کے بعد وہ ان لوگوں کے پاس نیکی کی دعوت دینے کے لیے گئے۔ یکایک ایک شخص انتہائی غصے کی حالت میں کھڑا ہو گیا اور انہیں گندی گندی گالیاں دیتے ہوئے ڈانٹنے لگا کہ کسی اور کو جا کر سمجھاؤ، ہمیں سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے میں ایک بوڑھے شخص نے اس سے کہا، اس کی بات تو سنو کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے نیکی کی دعوت پیش کی اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں سیکھے ہوئے نماز پڑھنے کے فضائل اور نہ پڑھنے سے متعلق وعیدیں سنائی۔ جب محسوس ہوا کہ لوہا گرم ہو چکا ہے تو انہوں نے کہا، جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو آپ حضرات کو مجھے بتانی چاہیے، کیونکہ میں نے ابھی کچھ عرصہ قبل ہی اسلام قبول کیا ہے۔ پھر انہوں نے مختصراً اپنے اسلام قبول کرنے اور اس دوران آنے والے امتحانات کے واقعات سنانے شروع کیے تو وہاں موجود حضرات شدت جذبات سے رونے لگے، حتیٰ کہ انہیں گالیاں بکنے والا شخص روتے ہوئے کہنے لگا، بس کرو ورنہ میرا دم نکل جائے گا۔ اب یہ تمام لوگ ان کے ساتھ مسجد میں چلنے کے لیے تیار تھے۔ نماز عصر میں ہم دو نمازی تھے، مگر حیرت انگیز طور پر نماز مغرب میں تین صفیں بن گئیں۔ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ میں ان لوگوں کو دیکھتے دیکھتے بوڑھا ہو گیا ہوں اور آج پہلی بار انہیں مسجد میں دیکھ رہا ہوں۔ کافروں کو چلیں، مشرکوں کو چلیں، دعوت دین دیں، قافلے میں چلو، کافر آ جائیں گے راہ حق پائیں گے، انشاءاللہ چلیں، قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ غیبت سے توبہ کا طریقہ، اللہ پاک کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ توبہ و استغفار کیجئے۔ جس جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کیجئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیبت کے کفارے میں یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے استغفار کرے، یہ کہے، اللہم اغفر لنا ولہ، یعنی الہی ہمیں اور اسے بخش دے۔ اگر نام یاد نہ رہے ہوں تو مشورتاً عرض ہے کہ ہو سکے تو روزانہ وقتاً فوقتاً یوں کہے، یا اللہ، میں نے آج تک جتنی بھی غیبتیں کی ہیں ان سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ پاک، میری اور آج تک میں نے جن جن مسلمانوں کی غیبت کی ہے ان سب کی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مغفرت فرما۔ یاد رہے، قبولیت توبہ کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس گناہ سے دل میں بیزاری اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ میری اور جن جن کی میں نے کی ہے غیبت، یا خدا مغفرت فرما دے، فرما سب پہ یہ رحمت یا خدا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بندے سے بھی معافی مانگے، جس کی غیبت کی اس کو پتہ نہیں چلا تو اس سے معافی مانگنا ضروری نہیں۔ اللہ غفار کے دربار میں توبہ و استغفار کیجئے اور دل میں پکا عہد کیجئے کہ آئندہ کبھی کسی کی غیبت نہیں کروں گا۔ اگر اس کو معلوم ہو گیا ہے تو اس کے پاس جا کر غیبت کے مقابل اس کی جائز تعریف اور اس سے محبت کا اظہار کیجئے تاکہ اس کا دل خوش ہو۔ और आजिज़ी के साथ अर्ज़ कीजिए कि मैंने जो आपकी गीबत की है उस पर नादिम हूँ, मुझे मुआफ़ फरमा दीजिए। अब बिलफर्ज़ वो मुआफ़ ना भी करे तब भी इंशाअल्लाह आखिरत में मुआखज़ा ना होगा। हाँ, अगर रस्मी तौर पर सॉरी कह दिया, बिला इखलास मुआफ़ी मांगी और उसने मुआफ़ कर भी दिया, तब भी आखिरत में मुआखज़े यानी पूछ गुछ का खौफ बाकी है। सदका प्यारे की हया का के न ले मुझसे हिसाब, बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या है। तौबा के बाद जिसकी गीबत की थी उसको पता चल गया तो, गीबत से तौबा कर लेने के बाद मुख्ताब यानी जिसकी गीबत की थी उसको पता चला तो अब क्या करना चाहिए। इस ज़िमन में मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाही अलैह फतवा रज़विया जिल्द 24 सफ़ा 411 पर नकल करते हैं, रौदतुल उलमा में है कि मैंने हज़रत अबू मोहम्मद रहमतुल्लाही अलैह से पूछा कि अगर गीबत उस शख्स तक नहीं पहुंची जिसकी गीबत की गई थी तो गीबत करने वाले के लिए तौबा फ़ायदेमंद होगी या नहीं। उन्होंने फरमाया, हाँ फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि इसने बंदे के हक के मुतालिक होने से पहले तौबा कर ली है। गीबत बंदे का हक यानी हुकूकुल इबाद में शामिल उस वक्त होगी जब उस तक पहुंच जाएगी। मैंने कहा, अगर तौबा के बाद उस शख्स तक गीबत पहुंच जाए, फरमाया कि उसकी तौबा बातिल नहीं होगी बल्कि अल्लाह करीम दोनों को बख्श देगा, गीबत करने वाले को तौबा की वजह से और जिसकी गीबत की गई उसे उस तकलीफ़ की वजह से जो उसे गीबत सुनकर हुई है, क्योंकि अल्लाह पाक करीम है। इसके मुतालिक ये नहीं कहा जा सकता कि वो किसी की तौबा कबूल फरमा कर रद्द फरमा दे, बल्कि दोनों को बख्श देगा। डर था कि इसिया की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं। जिसकी गीबत की उसको पता चल गया फिर मर गया। इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं, जिसकी गीबत की उसको पता चल गया और अब वो मर गया या गायब हो गया, उससे किस तरह माफी मांगे। ये मामला बहुत दुश्वार हो गया, लिहाजा अब चाहिए कि खूब नेकियां करे ताकि कयामत में अगर इसकी नेकियां गीबत के बदले दे दी जाएं, जब भी उसके पास नेकियां बाकी रह जाएं। हिकायत हजरत शेख अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाही अलैह नकल करते हैं, मेरे भाई अफजलुद्दीन रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं, नेक आमाल ज्यादा करता हूँ ताकि कयामत के दिन मेरे पास आमाल में से कुछ ना कुछ हो जो कि उनको दिया जा सके जिनका मेरे जिम्मे हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से माल या इज्जत का कुछ मुतालबा हो। बाजारे अमल में तो सौदा ना बना अपना, सरकार करम तुझ में ऐबी की समाई है। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हाय शामते नफ्स, आह आह आह, वो मजमुए गफलत व सरापा मासियत कहाँ जाए जो कि नफ्स की शामत के सबब ला तादाद अफराद की गीबत कर चुका हो। मरने या गायब होने वालों की बात तो दूर रही, जानने पहचानने के बावजूद मुरव्वत की मनोवजनी बेड़ियों में जकड़े होने के बाइस माफी मांगने से शर्माता हो। हाय हाय हाय, अगर बरोज़े क़यामत ढेर सारे अहले हुकूक नेकियां लेने और अपने अपने गुनाह सर लदवाने पर तुल गए तो क्या बनेगा। आह आह आह, सदक़े या रसूल अल्लाह, तुझे हरगिज़ गवारा हो नहीं सकता कि महशर में जहन्नम की तरफ रोता हुआ तेरा गदा निकले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। दुनिया ही में मुआफ़ करवा लेने में आफियत है, हमारे प्यारे प्यारे आकाश मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है, जिसके ज़िम्मे अपने भाई का आबरू वगैरह किसी बात का मजलिमा यानी जुल्म हो, उसे लाजिम है कि यहीं उसे मुआफ़ी चाह ले कबल उस वक्त के आने के वहाँ ना दीनार होंगे और ना दिरहम। अगर उसके पास कुछ नेकियां होंगी तो बकदर उसके हक के इससे लेकर उसे दी जाएंगी, वरना उसके गुनाह इस पर रखे जाएंगे। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। बोहतान की तारीफ। किसी शख्स की मौजूदगी या गैर मौजूदगी में उस पर झूठ बांधना बोहतान कहलाता है। इसको आसान लफ्ज़ों में यूं समझिए कि बुराई ना होने के बावजूद अगर पीठ पीछे या रूबरू वो बुराई उसकी तरफ मंसूब कर दी तो ये बोहतान हुआ। मसलन पीछे या मुंह के सामने रियाकार कह दिया और वो रियाकार ना हो, या अगर हो भी तो आपके पास कोई सबूत ना हो, क्योंकि रियाकारी का ताल्लुक बातनी अमराज से है, लिहाजा इस तरह किसी को रियाकार कहना बोहतान हुआ। बोहतान से तौबा का तरीका। बोहतान से तौबा करें, इस तौबा में तीन बातों का पाया जाना ज़रूरी है। नंबर वन, आइंदा बोहतान को तर्क करने का पक्का इरादा करना। नंबर टू, जिसका हक ज़ाया किया मुमकिन हो तो उससे मुआफ़ी चाहना। मसलन साहिब हक जिंदा और मौजूद है, नीज़ मुआफ़ी मांगने से कोई झगड़ा या अदावत पैदा नहीं होगी। नंबर थ्री, जिन लोगों के सामने बोहतान लगाया उनके सामने अपने झूठ यानी बोहतान का इकरार करना, यानी ये कहना कि मैंने जो बोहतान लगाया था उसकी कोई हकीकत नहीं। आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना की किताब बाहर शरीयत 312 सफहात हिस्सा 16 सफ़ा 181 पर सदर शरिया बदरु तरीक़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं, बोहतान की सूरत में तौबा करना और मुआफ़ी मांगना ज़रूरी है, बल्कि जिनके सामने बोहतान बांधा है उनके पास जाकर ये कहना ज़रूरी है कि मैंने झूठ कहा था, जो फुलां पर मैंने बोहतान बांधा था। नफ्स के लिए यकीनन ये सख्त गिरा है, मगर दुनिया की थोड़ी सी जिल्लत उठानी आसान, मगर आखरत का मामला इंतहाई संगीन है। खुदा की कसम दोजख का अजाब बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। लिहाजा सुनिए और लरजिए, बोहतान का अजाब। सरकार आली वकार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मुसलमान की बुराई बयान करे जो उसमें नहीं पाई जाती तो उसको अल्लाह पाक उस वक्त तक दोज़खियों के कीचड़ पीप और खून में रखेगा जब तक वो अपनी कही हुई बात से ना निकल आए। गुनाह के इल्ज़ाम का अदाब। लोगों पर गुनाहों की तोहमत लगाने वालों के अदाब की एक दिल हिला देने वाली रिवायत मुलाहिज़ा हो। चुनाचे जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखे हुए कई मनाजिर का बयान फरमाकर ये भी फरमाया कि कुछ लोगों को जबानों से लटकाया गया था। मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से उनके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये लोगों की झूठी तोहमत लगाने वाले हैं। शक्की मिजाजों को तंबीह। जो शक्की मिजाज औरतें अपने मर्दों पर तोहमतें धरती और इस तरह की बातें करती हैं कि किसी औरत के चक्कर में है, सब पैसे उसी को दे आता है वगैरह, यूं ही जो वहमी मर्द अपनी औरतों पर इस तरह गुनाह की तोहमतें लगाते हैं कि इसकी किसी के साथ आशनाई है, अपने आशना को फ़ोन करती है, उससे मिलती है, गंदे काम करवाती है वगैरह, उनको बयान करदा इल्ज़ाम गुनाह के अदाब की रिवायत से इबरत हासिल करनी चाहिए। इस ज़मन में एक इबरत अंगेज़ हिकायत मुलाहिज़ा हो। चुनाचे औरत पर तोहमत लगाने के सबब हलाकत। হজরত আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতি শাফঈ রহমতুল্লাহ আলে শরহু সুদুর মে নকল করতে হ্যাঁ, এক শখস নে খাব মে জরীর খতফি কো দেখা তো পুছা, মা ফআলাল্লাহ বিকা, ইয়ানি আল্লাহ পাক নে তুমারে সাথ ক্যা মামলা কিয়া, তো উন্হোনে কাহা মেরি মগফিরত কর দি। মেনে পুছা মগফিরত কা ক্যা সবব বনা, কাহা উস তকবীর কহনে পর জো মেনে এক জঙ্গল মে কহি থি। মেনে পুছা ফরজ দক কা ক্যা হুয়া, তো উন্হোনে কাহা আফসোস পাক দামন ঔরতোঁ পর তোহমত লগানে কে বাইস ও হলাকত মে গ্রেফতার হুয়া। হায় হায় হায়, হমনে না জানে জিন্দগি মে কিতনো পর বোহতান বাঁধে হোঁগে, আহ জি চাহতা হে ফুট কে রোউ তেরে গম মে সরকার, মগর দিল কি কসাওয়ত নহি জাতি। এক দূসরে কো গীবত সে বচানে কা তরিকা, এ আশিকান রসুল জিন জিন খুশ নসিবোঁ কা ইয়ে জেহন বন রহা হো কি হমে গীবত কে মূজি মরজ সে ছুটকারা পানে কে লিয়ে কোশিশেঁ তেজ তর কর দেনি হ্যায়, ও আপস মে তয় কর লে কি হম মে সে আগর মুআদ আল্লাহ কোই গীবত শুরু কর দে তো জো মৌজুদ হো ও আপনি কুব্বত কে মুতাবিক জবান সে টোক কর রোক দে ও তোবা করনে কা কহে, নিজ অব্বল আখির সল্লু আলাল হাবিব কহকর দুরুদ শরীফ পড়ানে কে সাথ কহে তুবু ইলাল্লাহ, ইয়ানি আল্লাহ পাক কি তরফ তোবা করো। ইয়ে সুনকর গীবত করনে ওয়ালা কহে আস্তাগফিরুল্লাহ, মে আল্লাহ পাক সে বখশিশ চাহতা হুঁ, ইনশাআল্লাহ ইস তরে হাতো হাত তোবা কি সাদত মিল জায়েগি। জিনহোনে গীবত করতে না সুনা হো উনসে এহতিয়াত লাজমি হ্যায়, আওয়াজ ও আন্দাজ এসে না হো কি জিনকো পতা না থা উনকো ভি মালুম হো যায় কি ফুলানে মাআদ আল্লাহ গীবত কি। কিসি কো কালা কহনা ভি গীবত হ্যায়, হামারে বুজুর্গান দীন রহমতুল্লাহ আলাইহিম তোবা কে মামলে মে বিলকুল নহি শরমাতে থে। চুনাচে হুজ্জতুল ইসলাম হজরত ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গজালি রহমতুল্লাহ আলাইহি নকল ফরমাতে হ্যায়, হজরত ইমাম ইবনে সিরিন রহমতুল্লাহ আলাইহি নে এক শখস কা জিক্র করতে হুয়ে ফরমায়া, ও আদমি সিয়া ফাম ইয়ানি কালা হ্যায়, ফির ফরমায়া আস্তাগফিরুল্লাহ ইয়ানি মে আল্লাহ পাক সে বখশিশ তলব করতা হুঁ, মে সমঝতা হুঁ কি মেনে ইসকি গীবত কি হ্যায়, বগৈর শরমায়ে ফৌরন তোবা কর লেনি চাহিয়ে। এ আশিকান আউলিয়া, হামারে বুজুর্গান দীন রহমতুল্লাহ আলাইহিম কা খৌফে খুদা মরহাবা, ইতনে জবরদস্ত বুজুর্গ নে ফৌরন সবকে সামনে তোবা কর লি। ইসমে ইয়ে ভি দর্স মিলা কি খুদা না খাস্তা কবি লোগো কে সামনে গীবত বগৈরা গুনাহ সরজদ হো যায় তো এহসাস হোতে হি বগৈর শরমায়ে সবকে সামনে তোবা কর লি যায়, আগর বাদ মে এহসাস হো গিয়া ওর তোবা কর লি তো জিন জিন কে সামনে গীবত কা গুনাহ কিয়া উনকো আপনি তোবা পর মুত্তালে কর দিয়া যায়। তোবা কা ইয়ে কায়দা জেহন মে রাখিয়ে, জেসা কি হাদিস পাক মে হ্যায় আল্লাহ পাক কে আখরি রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম কা ফরমানে ইবরত নিশান হ্যায়, জব তুম কোই গুনাহ করো তো তোবা কর লো, আসসিররু বিসসিররি ওয়াল আলানিয়াতু বিল আলানিয়া, ইয়ানি পোশিদা গুনাহ কি তোবা পোশিদা আর আলানিয়া গুনাহ কি তোবা আলানিয়া। ইস শিকায়ত সে ইয়ে ভি মালুম হুয়া কি বিলা ইজাজত শরঈ পিঠ পিছে কিসি মুসলমান কে জিসমানি আয়েব বয়ান করনা, মসলন কালা ভুরা বদসুরত কোড়ি গঞ্জা মোটা লম্বা ঠিঙ্গনা কানা অন্ধা বেহরা গুঙ্গা বান্ডা ভেঙ্গা লুলা লঙ্গড়া কুবড়া কহনা গীবত হ্যায়। বাদ ইসলাম কালি রঙত ওয়ালে ইসলামী ভাই কো বিলালি কহতে হ্যায়, বিলা জরুরত ইয়ে ভি না কাহা যায় কি পিঠ পিছে সে কহনা গীবত মে শুমার হোগা, ক্যুঁকি জিসকো বিলালি কে মুরাদি মানা মালুম হোঙ্গে ইয়ানি জো সমঝতা হোগা কি মে কালা হুঁ ইসলিয়ে মুঝে বিলালি কে রহে হ্যায় তো উসকো বুরা লগ সকতা হ্যায়। হ্যাঁ আগর কিসি মখসুস ইসলামী ভাই কি পহচান হি বিলালি হ্যায় তো ইস নিয়ত সে বিলালি কহনে মে হরজ নহি। গুনাহ হতে হি ফৌরন তোবা করনা ওয়াজিব হ্যায়, হযরত ইমাম নববী রহমতুল্লাহ আলাইহি সে মনকুল হ্যায়, জুহি গুনাহ সাদির হো ফৌরন তোবা কর লেনা ওয়াজিব হ্যায়, ख्वा सगीरा गुना ही क्यों ना हो। किसी की बात गीबत ना थी मगर आपने गीबत कह दी, तो किसी बात को गुनाह भरी गीबत करार देने के लिए मालूमात होना ज़रूरी है। अगर आपने बेसोचे समझे किसी की बात को गीबत ठहराया और उसके मुर्तकिब को गुनाहगार करार दिया और वो गुनाहगार नहीं था, तो इस सूरत में आप गुनाहगार होंगे। तौबा उस पर नहीं, आप पर वाजिब हो जाएगी। बहरहाल आपस में ये ज़रूर तय कर लीजिए कि गीबत ना हो रही हो, फिर भी अगर किसी ने गलत फहमी के सबब तूबू इलल्लाह कह दिया, तब भी हम झगड़े की कैफियत पैदा ना होने देंगे, वरना शैतान को दूसरे जाविये से यानी लड़वाने और दिलों में बुग्ज़ो कीना डलवाने के ज़रिए गुनाह करवाने का मौका हाथ आ सकता है। झगड़े से बचने की फजीलत। खुदा ना खास्ता कभी दो इस्लाम भाई लड़ पड़े तो मौका पाकर तीसरा बुलंद आवाज से सल्लू अलल हबीब कह दे, दोनों दुरूद शरीफ पढ़ते हुए सुलह कर लें। जो हक पर होने के बावजूद नहीं झगड़ता, उसका तो इंशाअल्लाह बेड़ा ही पार है। चुनाचे मदीने के सुल्तान रहमत दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने जन्नत निशान है, जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता, मैं उसके लिए जन्नत के अंदरूनी किनारे पर एक घर का जामिन हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह कहने की फजीलत। लोगों की मौजूदगी में हर तरह की मासियत बल्कि नापसंदीदा हरकत, मसलन फजूल गोई सादिर होने पर, बल्कि मौका की मुनासबत से बिला उन्वान भी बुलंद आवाज से अव्वल आखिर सल्लू अलल हबीब के साथ तूबू इलल्लाह कह देना चाहिए कि हर वक्त तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहना कारे सवाब है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन इस्तग़फ़रल्लाह गफ़र लहू, यानी जो कोई अल्लाह पाक से इस्तिग़फ़ार यानी मगफ़रत तलब करेगा, अल्लाह पाक उसकी मगफ़रत फरमा देगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना भी इस्तिग़फ़ार यानी मगफ़रत तलब करना है। तौबा के तीन अरकान हैं। अलबत्ता गुनाह सरजद हुआ हो तो उसकी महज रस्मी तौबा काफ़ी नहीं। आशिकान रसूल की मदनी तहरीक दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना की किताब बयानाते अत्तारिया 480 सफहात हिस्सा अव्वल के सफ़ा 79 पर है। सदरुल अफाजिल हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, तौबा की असल रुजू इलल्लाह यानी अल्लाह पाक की तरफ रुजू करना है। इसके तीन रुकन हैं। नंबर वन एतराफ़ जुर्म, नंबर टू नदामत, नंबर थ्री अज़्म तर्क यानी इस गुनाह को तर्क करने का पक्का इरादा। अगर गुनाह काबिल तलाफी हो तो इसकी तलाफी यानी नुकसान का बदला भी लाजिम। मसलन तारिकु सलाह यानी बेनमाजी के लिए पिछली नमाजों की कजा भी लाजिम है। सभी गीबत से बचने की तरकीब करें। तमाम मुसलमान जुमला आशिकान रसूल बशमूल दावत इस्लामी की तमाम मजालिस के अराकीन व मुबल्लिगीन, मुदरसीन व तलबाए इल्मे दीन, मुअल्लिमीन व मुतअल्लिमीन, नीज मदनी काफिलों के मुसाफिरीन वगैरह गीबत से बचने के मस्कूरा तरीकों पर अमल करेंगे तो इनके लिए इंशाअल्लाह रहमतें ही रहमतें और मगफिरतें ही मगफिरतें होंगी। या अल्लाह पाक मुसलमानों को बदगुमानियों, गीबतों, तोहमतों, चुगलियों, दिल आज़ारियों और वगैरह गुनाहों से महफूज फरमा। या अल्लाह पाक हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी उम्मत की मगफिरत फरमा। आमीन बिजाही खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआए अत्तार या रब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो भी इस्लामी भाई या इस्लामी बहन अपने यहाँ एक दूसरे को गीबत से बचाने का तरीक़ा राइज करें, उसकी और जो जो साथ दें उन सब की गैब से मदद फरमा, उन सब की गीबत बल्कि हर मासियत से हिफाजत फरमा कर इनके दिलों में अपनी और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची महब्बत भर दे, उन सब को जन्नतुल फिरदौस में बेहिसाब दाखिल फरमा कर प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में बसा दे, और ये तमाम दुआएं मुझ गुनाहगारों के सरदार के हक में भी कबूल फरमा। या अल्लाह पाक, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत की मगफिरत फरमा। आमीन बिजाही खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर मुसलमान की इज्जत, माल और जान दूसरे मुसलमान पर हराम है।